दुनिया काम की जगह है, कब्र आराम की जगह है और जन्नत इनाम की जगह है। जो दुनिया में काम करेगा वो जन्नत में इनाम पाएगा। इसकी मिसाल यूं समझिए कि ऐसे एक फौजी फौज के अंदर नौकरी लेता है तो उसका मकसद ही होता है मशक्कतें उठाना। उसको अपने जिस्म के ऊपर मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइजेज होती हैं, हत्ता के अपनी जान भी फिदा करनी होती है। इसी तरह इंसान दुनिया में आया ही मशक्कत उठाने के लिए है। अगर कोई ये कहे कि दुनिया में मशक्कत पेश आई तो ये हैरानी की जगह नहीं है। हैरानी की जगह यह है कि मशक्कत ना आए। अजीब बात तो यह है कि हम में से हर बंदा इस दुनिया में अपनी जन्नत सजाने में लगा हुआ है। मेरा घर ऐसे हो, बीवी ऐसे हो, गाड़ी ऐसे हो, बच्चे ऐसे हों, कारोबार ऐसा हो, लंबी सोचें और उसे यह पता नहीं होता कि मौत उससे ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला ने तो बंदों के लिए जन्नत आखिरत में बनाई और हम इसी दुनिया में जन्नत चाहते हैं, हर चीज अपनी मन मर्जी की। यही इस दुनिया का धोखा है कि इंसान को यह बात याद नहीं होती कि यह दुनिया एक पुल की मानद है जो इंसान को आखिरत से मिला देती है। चुनांचे इस दुनिया में दो चीजें इंसान के लिए बहुत फितना हैं। एक शहवात और दूसरी शुबहात। शहवात की वजह से भी इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है और शुबहात की वजह से भी गाफिल हो जाता है। शहवात दो तरह की हैं, एक को शहवत शिकम कहते हैं, खाने पीने की इश्तिहा। चुनांचे इंसान हराम और हलाल का ख्याल ही नहीं रखता, बस उसको मजेदार चीज खानी है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं उसका पता नहीं होता, वो किस पैसे से खरीदी उसका एहसास नहीं होता, उसको अपना पेट भरना है, इसको शहवत शिकम कहते हैं। और जब इंसान के अंदर ये शहवत ज्यादा हो खाने पीने की तो उसमें शहवत फर्ज भी ज्यादा होती है। शहवत फर्ज कहते हैं जो जिंसी ख्वाहिश होती है, इसलिए रोजे रखने से वो शहवत कम होती है और पेट भरकर खाने से वो शहवत बढ़ जाती है। हत्ता के इंसान बुढ़ापे की उम्र को चला जाता है, उसे आखिरत याद नहीं होती, उसका जी चाहता है फिर किसी कंवारी लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो अपनी कब्र को भूल जाता है, वो इस बात को भूल जाता है कि मुझे अल्लाह के यहां पेश होना है, उसे दुनिया की लज्जतें याद होती हैं। तो शहवत शिकम का अंजाम शहवत फर्ज हुआ करती है। इसलिए जो इंसान चाहते हैं कि हमारी निगाह कंट्रोल में हो, ख्यालात पाकीजा हो, तो उनको चाहिए कि वो कम खाएं। शरीयत ये नहीं कहती कि इंसान खाना पीना ही छोड़ दे, मगर ये जरूर कहती है कि तुम कम खाओ हत्ता के तुम्हारे ऊपर शहवत गलबा न करे। इसकी तरतीब ये है कि जब इंसान पेट भरकर खाता है तो इस पर गफलत गालिब आ जाती है। आपने देखा होगा पेट भर कर खाने से नींद आती है, गफलत की किस्म है। और इंसान पेट भर खा लेता है, उसका कोई और काम करने को दिल नहीं चाहता। तो पेट भर कर खाने से गफलत ज्यादा, और गफलत ज्यादा होने से फिर शहवत ज्यादा होती है। जब इंसान के अंदर शहवत ज्यादा होगी तो गुनाह भी ज्यादा होंगे, जब गुनाह ज्यादा होंगे तो दिल के ऊपर स्याही भी ज्यादा होगी, जब दिल स्याह हो जाएगा तो दिल सख्त भी हो जाएगा। और यही इंसान की बदबख्ती की निशानी होती है कि उसका दिल सख्त हो जाए। तो खाने का ताल्लुक इंसान के दिल की सख्ती के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए जो जरूरत रखी वो बहुत थोड़ी है। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा एक खजूर खाए तो 3 दिन तक उसको भूख की वजह से मौत नहीं आ सकती। एक खजूर के अंदर इतनी न्यूट्रिशन होती है। इसलिए हमारे बाद बुजुर्ग चंद लुकमे खाते थे पूरे दिन के अंदर और सेहत की जिंदगी गुजारते थे। हम लोग आदतन ज्यादा खाने के आदि बन गए हैं। 2 रोटी खा लेना, 3 रोटी खा लेना, ये आदत है हमारी, जिस्म की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम दिन में 3 दफा खाते हैं। जानदार ऐसे भी हैं कि जो रोजाना भी नहीं खाते। चुनांचे एक जगह हम गए जहां लोग शेरों को पालते थे, तो उन्होंने बताया कि हम हफ्ते में 1 मर्तबा इसको गोश्त डालते हैं, हर इतवार को। तो हमने पूछा कि क्या आपको गोश्त महंगा पड़ता है? कहने लगे नहीं नहीं, इसके खाने की तरतीब ही यही है, हफ्ते में 1 दफा खाता है। तो जानवर तो हफ्ते में 1 दफा खाएं और इंसान 1 दिन में 3 मर्तबा खाए, और 3 के अलावा भी चाय के साथ बिस्किट हैं जी। फलां जगह गए थे तो आइसक्रीम खा ली, तो हम तो बहुत ज्यादा खाने के आदि हैं। जितना ज्यादा खाएंगे उतना जहनी सलाहियत कम होती जाएगी। चुनांचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने सिर्फ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को देखा जो मोटे भी थे और अकलमंद भी थे, वरना मोटे बंदे को मैंने अकलमंद नहीं देखा। लगता है कि वो चर्बी जैसे जिस्म पे चढ़ती है, वो दिमाग पे भी चर्बी चढ़ जाती है। तो जितना इंसान कम खाए उतना उसका दिमाग बेदार रहता है, वो बेदार मग़्ज़ होता है, उस पर गफलत नहीं होती। तो ज्यादा खाने से इंसान पर शहवत ज्यादा होती है, और तनासुब के साथ खाए तो इंसान के ख्यालात पाकीज़ा रहते हैं। और जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर इंसान करने की को जी नहीं चाहता, नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, तिलावत करने को दिल नहीं चाहता, हत्ता के मस्जिद में आने को दिल नहीं चाहता, नेक महफिल में आने को दिल नहीं चाहता। दिल में बुग्ज हो जाता है एक, और यह बुग्ज यहां तक जाता है कि इंसान को दूसरे की भी नेकी अच्छी नहीं लगती। किसी ने चेहरे पे सुन्नत सजा ली, इसको तकलीफ होती है। कोई नमाज बाकायदगी से पढ़ता है, इसको तकलीफ होती है। कोई मदरसे में दाखला ले लेता है, इसको तकलीफ होती है। ये फिस्क व फजूर की यहां तक इंतहा होती है कि दूसरे की भी नेकी बंदे को अच्छी नहीं लग रही होती। तक इंतहा होती है कि दूसरे की भी नेकी बंदे को अच्छी नहीं लग रही होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल में रिक्कत आए, नरमी आए, तो उसका एक इलाज यह है कि हम अपने खाने पे ध्यान दें। एक तो कम खाएं और दूसरा हलाल पाकीजा माल खाएं। मुश्तबे चीजों का खाना इंसान के दिल को गाफिल बना देता है। और जब ज्यादा खाता है तो फिर माल की मोहब्बत भी दिल में ज्यादा आती है। इसलिए आज के दौर का एक बड़ा फितना यही है कि हर बंदा चाहता है बस मेरे पास एक खजाना होना चाहिए। या लैतलना मिस्लमा ऊतिया कारून, ए काश जितना कारून के पास खजाना था वो मेरे पास होता। हमारे अकाबे ने लिखा है कि माल की मोहब्बत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। क्यों? कि जिस इंसान के दिल में माल की मोहब्बत हो तो सबसे पहली बात कि उसमें ऐसी शहवत पैदा होती है कि वो माल बर्बाद करता है। चुनांचे कितने लोग हैं जिनको माल अल्लाह ने दिया और उनको शादियों से ही फुर्सत नहीं होती, इसी में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उम्र गुजर जाती है इसी में। और जो शरीयत का ख्याल नहीं करने वाले होते वो बदकारियों की तरफ लग जाते हैं तो माल जाया। और अगर इंसान अपना माल जाया न करे तो उसका वारिस ऐसा कोई बन जाता है जो उसके माल को बर्बाद कर देता है। चुनांचे ऐसी मिसालें आंखों से देखी गई हैं कि एक आदमी ने मेहनत से माल जमा किया और उसकी औलाद ने उस माल को पानी की तरह बहा दिया। मशहूर वाक्य है कि एक आदमी की इतनी जमीनें थी कि उसकी जमीनों में रेलवे के कई स्टेशन बने हुए थे उसकी अपनी जमीन में, और उसने शहर के चौक में खड़े होकर कहा अपने दोस्तों को कि तुम परेशान रहते हो आएगा कहां से, और मैं परेशान रहता हूं लगाऊंगा कहां पे। अब उसकी ये तकब्बुर का बोल अल्लाह को नापसंद आया। नतीजा क्या हुआ कि बीमार हुआ और चंद दिनों के बाद दुनिया से चला गया। उसका एक बेटा था, 18 साल उसकी उम्र थी, वो सारी जायदाद का मालिक बन गया। अब जवानी की उम्र, माल की कसरत, तो फिर बुरे लोग उसके दोस्त बन गए। लोगों ने उसको बदकारी के काम पर लगा दिया। जवानी की उम्र थी, उसको भी बहुत अच्छा लगता, रोज रात को नए मेहमान। चुनांचे उसने अपना पैसा लुटाना शुरू कर दिया। जब दो चार साल उसने खूब जी भरकर अपनी जवानी को बर्बाद किया तो किसी ने उसको बैरून मुल्क का रास्ता दिखा दिया। तो फिर वो बाहर मुल्क जाता और वहां के क्लबों में रात गुजारता और लाखों रुपया सर्व करता। एक वक्त आया कि बैंक में जितना पैसा था वो सारा का सारा लग गया। फिर वो आके जमीन को बेचता और बाहर का चक्कर लगा आता, फिर जमीन बेचता, फिर चक्कर लगा के आता। हत्ता के चंद साल गुजरे तो उसने अपनी सारी जमीनें बेच दी। एक वो वक्त भी आया कि जब जिस मकान में रहता था उसने मकान भी बेच लिया। फिर उस पर ऐसी हालत आई उस लड़के पर कि जिस चौक पे खड़े होकर उसके बाप ने तकब्बुर का बोल बोला था कि लोग परेशान होते हैं आएगा कहां से, और मैं परेशान हूं लगाऊंगा कहां पे, उसी चौक में उसका बेटा खड़े होकर अल्लाह के नाम की भीख मांगा करता था। तो जो इस इंसान के दिल में माल की मोहब्बत हो, या तो खुद शहवतों के जरिए माल बर्बाद कर देता है, वरना औलाद ऐसी मिलती है कि वो उसका माल बर्बाद कर देती है। तीसरा, उसका माल अक्सर ईंट गारे में जाया हो जाता है, महल्लात बनते हैं, करोड़ों रुपया ईंट गारे में लग जाता है, या फिर उस पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत होता है जो उसके माल को छीन लेता है। या फिर इस तरह बीमार होता है कि वो माल से लज्जत नहीं हासिल कर पाता, या फिर उसका माल ऐसी जगह लगता है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं होती। कारोबार में डाला डूब गया पैसा, करोड़ों पतियों के करोड़ों डूबते हैं। तो माल की मोहब्बत का अंजाम बिल आखिर बुरा ही होता है। और ये ज़हन में रखें कि माल अकेला नहीं आता, जब भी आता है अपने साथ वबाल को लेके आता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ऐसा माल मांगें जो वबाल से पाकीज़ा हो। कितने लोग हैं, माल तो उनको मिल जाता है, औलाद नाफरमान बन जाती है, बीवी नाफरमान बन जाती है, घर के लोगों में से बीमारी नहीं जाती, ऐसे माल को क्या करना है। माल वो जो सुकून का जरिया हो और शरीयत पे चलने में मुआविन बने, ऐसा माल अल्लाह से मांगना चाहिए। जब जहन में ये हो कि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, तो फिर इंसान अपने मकसद को नहीं भूलता। चुनाचे हजरत हाजी इमदाद वाला महाजन मक्की रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में एक चार्ट लगा हुआ था और उस पर पांच बातें लिखी हुई थी। पहली बात यह लिखी हुई थी कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें यहां रहना है। यह पहली बात लिखी हुई थी कि दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। दुनिया की जिंदगी कितनी है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र बैन सबईन व सित्तीन, 60-70 के दरमियान। ऐसा भी होगा कि बच्चा पैदा होते ही मरेगा, ऐसा भी होगा कि 100 साल का होके मरेगा, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 60-70 की एवरेज। तो 60-70 की तो टोटल उम्र है। इस उम्र के लिए दिन रात हम लगे होते हैं। तो वो फरमाते हैं कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुमने दुनिया में रहना है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल। जब उनकी वफात हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, आपने दुनिया की जिंदगी को कैसे पाया? तो जवाब दिया कि अल्लाह, यूं महसूस होता था कि जैसे एक मकान के दो दरवाजे हैं, मैं एक में से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आया। 950 साल की जिंदगी पर ये कमेंट्स हैं उनके। तो 60-70 साल की जिंदगी तो ख्वाब ही नजर आएगी, और उनमें से भी हम में से कितने ऐसे हैं जो आधी से ज्यादा गुजार चुके। अब हम जैसे लोग जो 50-55 से ऊपर जा चुके, वो तो अब जिंदगी के जोहर असर का वक्त गुजार रहे हैं, और जोहर असर के बाद मगरिब के होते हुए देर नहीं लगा करती। इस उम्र में भी पहुंच के इंसान की शहवतें खत्म न हो तो वो तो फिर अपनी आखिरत को बर्बाद ही कर रहा है। तो फरमाया कि दुनिया में इतनी कोशिश करो जितना तुमने दुनिया में रहना है। दुनिया में हमेशा तो कोई नहीं रहेगा। एक बादशाह ने महल बनवाया, ऐलान करवाया कि जो इसमें ऐब निकालेगा उसे इनाम देंगे। इतना उसको नाज था कि हमने इतना अच्छा महल बनवाया, लोग आते देखते कोई ऐब नजर ही ना आता। एक फकीर गुजरा उधर से, उसने कहा कि मुझे इसमें ऐब नजर आते हैं। लोग पकड़ के बादशाह के पास ले आए। बादशाह सलामत ने पूछा, तुम क्या कहते हो? कि बादशाह सलामत, इसमें दो ऐब हैं। उसने कहा, कौन से? कहने लगा बादशाह सलामत, एक ऐप तो ये कि ये महल हमेशा नहीं रहेगा, और दूसरा ऐप ये कि तू इसमें हमेशा नहीं रहेगा। बात तो ठीक है, कोई हमेशा तो यहां नहीं रहेगा, उसको दुनिया से जाना है। नमरूद ने अपनी जन्नत बनाई तो उसने ये दुआ मांगी कि अगर मौत आए तो ऐसी न दिन हो न रात हो, न मैं अंदर हूं न मैं बाहर हूं, न मैं ऊपर हूं न मैं नीचे हूं। उसके जहन में यह था कि ऐसी सूरत तो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकती। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, चुनांचे उसने बाग़े इरम बनवाया। जब बन गया तो उसने कहा कि मैं इसको देखने के लिए आऊंगा, तो अपनी घोड़े पर सवार हुआ और बाग देखने के लिए चला। अल्लाह की शान कि जब दरवाजे पर पहुंचा तो पता चला कि दरवाजे की हाइट कम थी और ये घोड़े पर बैठा हुआ था तो हाइट ऊंची थी। अब दो सूरतें थीं, या तो नीचे उतर आता तब अंदर जा सकता था, तो उसने सोचा कि नीचे उतरने की बजाय मैं बस एक पांव घोड़े से नीचे करके और गुजर जाता हूं। चुनाचे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, उसने एक पांव हटाया और जरा नीचे हुआ, यानी कैफियत क्या बनी, ना ऊपर ना नीचे, और घोड़े के दो पांव अंदर थे और दो बाहर, ना अंदर ना बाहर, और उधर सूरज आधा गुरूब और आधा तुलू। अल्लाह ने उस वक्त में उसको मौत अता फरमा। मौत से इंसान कैसे बच सकता है? दुनिया में लोगों ने ताजमहल बनाए, चले गए, एहराम में मिस्र बनाए, हजारों मजदूरों ने काम किया, दुनिया का अजूबा कहलवाता है, चले गए सारे, कोई बचा तो नहीं ना आखिर। तो दुनिया की जिंदगी आरजी है और बिल आखिर इंसान को चले जाना है। हमारी दुनिया की जिंदगी 100 साल की अगर हो तो आखिरत का एक दिन 70,000 साल का एक दिन, उस एक दिन के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो दुनिया की जिंदगी 2.5 मिनट बनती है। आखिरत के हिसाब से हम 2.5 मिनट दुनिया में हैं। अब 2.5 मिनट इंसान मस्तियां करे और आखिरत के अजाब को अपने ऊपर ले ले, ये कहां की अकलमंदी है? पहले वक्तों में उम्रें ज्यादा होती थी, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1,000 साल के करीब, तो उस जमाने में एक औरत नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी कि हजरत मेरी औलाद जिंदा नहीं रहती, बचपन में फौत हो जाती है, आप दुआ फरमाएं। भाई कितनी उम्र में फौत होती है? हजरत कोई 200 साल का होकर बच्चा फौत हो जाता है, कोई 300 साल का होकर फौत हो जाता है। तो मेरी औलाद बचपन में फौत हो जाती है, दुआ करो। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, अल्लाह की बंदी, एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जब इंसानों की उम्रें ही 100 साल से कम होंगी, इंसानों की उम्रें ही 100 साल से कम होंगी। तो वह हैरान होकर पूछने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिन लोगों की उम्रें 100 साल से कम होंगी वो रहने के लिए घर बनाएंगे? जब उम्र ही 100 साल से कम है तो क्या दुनिया में रहने के लिए घर बनाएंगे? उन्होंने फरमाया, हां घर बनाएंगे, ब्याह शादी करेंगे। तो उसने ठंडी सांस ली, तो उन्होंने पूछा कि ठंडी सांस क्यों ली? कहने लगी, मैं अगर उस वक्त होती जब उम्रें ही 100 साल से कम होती, मैं इतना वक्त तो एक सजदे में गुजार देती, इतना वक्त तो मैं एक सजदे में ही गुजार देती, इतनी थोड़ी तो जिंदगी है। और हमारी आंखों के सामने जनाजे उठते हैं, घर से जनाजे उठते हैं, हमसाये से उठते हैं, मोहल्ले से उठते हैं, फिर हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। तो फरमाया कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है, और दूसरी बात फरमाई कि आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें वहां रहना है। तो आखिरत में इंसान कितना रहेगा? हमेशा हमेशा, हमेशा हमेशा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अच्छे अंदाज से मिसाल से बात समझाई है। वो फरमाते हैं कि अगर ये जमीन और आसमान का दरमियान जितना खला है राई के दानों से भर दिया जाए और एक परिंदा हजार साल के बाद आए और एक दाना उठाए, फिर हजार साल के बाद दूसरा दाना उठाए, फिर हजार साल के बाद तीसरा दाना उठाए, एक वक्त आएगा जमीन और आसमान के दरमियान जितने दाने हैं ये खत्म हो जाएंगे, आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। तो जब इतना हमने आखिरत में रहना है तो फिर सोचिए कि आखिरत के लिए इंसान को कितनी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया अहले जन्नत को किसी बात पे हसरत नहीं होगी सिवाय उन लम्हात के जो दुनिया में उन्होंने गफलत के अंदर गुजारे होंगे। एक हदीस पाक में है कि इंसान जब नेक अमाल करता है तो फरिश्ते उसके लिए जन्नत में महल बनाना शुरू कर देते हैं, फिर काम रोक देते हैं। तो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि तुमने काम क्यों रोका? वो कहते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, क्योंकि ये बंदा पहले इबादत कर रहा था महल बन रहा था, इबादत खत्म कर दी तो महल बनना बंद हो गया। इसका मतलब ये कि हम दुनिया में जो नेक आमाल करते हैं इनके जरिए अल्लाह आखिरत में हमारी जन्नत बना रहे होते हैं। तो इंसान को चाहिए कि खूब नेकी करे, भाग भाग के नेकी करे, नेकी कर करके थके और थक थक के फिर नेकी करे, ताकि अल्लाह इसके लिए आखिरत को अच्छा बना दे। आज तो जो आदमी आखिरत की तैयारी में लगा हो तो लोग कहते हैं ओ जी इसने तो अपनी जिंदगी तबाह कर ली, इसने तो अपनी जिंदगी तबाह कर ली। हालांकि आखिरत तो असल है, दुनिया की जिंदगी तो बिल आखिर ढलती छांव है, चली जाएगी। हमने बचपन में किताबों में एक वाकया पढ़ा था कि एक मुल्क था जिसमें कई जजीरे थे, एक जजीरे पे आबादी थी और दूर जजीरा था उसके ऊपर स्कूल था। तो बच्चे यहां कश्ती के जरिए अपने स्कूल रोजाना जाते थे। एक दिन उन बच्चों के दिल में शरारत आई तो उन्होंने सोचा कि ये जो बूढ़ा है ना मल्ला, हम इसके साथ मजाक करें। तो उनमें से एक ने पूछा मल्ला से कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है? उसने कहा नहीं। तो सब हंसने लग गए और कहने लगे अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो आपने तो अपनी आधी जिंदगी तबाह कर ली। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे की बारी आई, उसने पूछा कि बाबा जी आपने फिजिक्स पढ़ी है? उसने कहा नहीं। वो फिर हंसने लगे कि अगर आपको फिजिक्स का नहीं पता आपने तो अपनी आधी जिंदगी तबाह कर ली। फिर थोड़ी देर बाद तीसरे की बारी आई, उसने पूछा जी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है? नहीं पढ़ी। अच्छा फिर तो आपने अपनी आधी जिंदगी तबाह कर ली। वो बच्चे ये बातें कर भी रहे थे, हंस भी रहे थे, अल्लाह की शान के इसी हाल में मौसम तब्दील हो गया, बादल आ गए, हवा चलने लगी और समुंदर के अंदर जैसे लहरें आ जाती हैं ना हाई टाइड, वो इस मौसम आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी। अब मल्लाह की बारी थी तो मल्लाह ने बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम लोगों को तैरना आता है? कहने लगे नहीं तैरना तो नहीं आता। मल्लाह ने कहा कि फिर तो तुमने सारी जिंदगी तबाह कर ली। وہی حال ہے کہ آج دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ جو دین میں لگا ہوا ہے اس نے آدھی زندگی تباہ کر لی، اور جب موت کا وقت آئے گا تب حقیقت کھلے گی کہ نہیں، ہم نے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی۔ تو کتنی خوبصورت بات کہی کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو۔ اس لیے ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح چل رہے ہوتے تھے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے قرض رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 70 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب ایک طواف کے 7 چکر، تو 490 چکر، تقریباً 12-13 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت نفل۔ ذرا 140 رکعت نفل پڑھ کے دیکھیں نا حالت کیا ہوتی ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر کسی رات 10 رکعت نفل پڑھ لینا تو 10ویں رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ایسا میں اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے کہ 10 رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے، وہ 140 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور یہ ایک عمل تھا ان کا، باقی سارے دن کے اعمال اس کے علاوہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے حتی یتورمت قدما، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے تو وقت کو اس قدر بچایا کہ انسان ان کے حالات پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا خشک ستو کھا رہا ہے، تو میں نے کہا حضرت اس میں پانی ملا لیتے، تر کر لیتے، ذرا اچھے لگتے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے خشک ستو کھانے کا بھی وقت کا اندازہ لگایا اور تر ستو کھانے کا بھی اندازہ لگایا، تر کر کے کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، میں پچھلے 20 سال سے خشک ستو پھانک کے گزارا کر لیتا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا۔ کھانے میں بھی اپنا وقت بچاتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اگر کوئی کھانے کی دعوت دیتا تھا تو وہ شرط لگاتے تھے کہ بھئی مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دینا، میں اس کمرے میں آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں گا، جب تم دسترخوان پہ کھانا لگا دو گے تو میں اٹھ کے کھانا کھا لوں گا، واپس آ جاؤں۔ کئی ایسے اکابر بھی تھے کہ راستہ چلتے ہوئے راستے میں بھی کتاب پڑھتے جاتے تھے کہ یہ وقت بھی ہمارا کیوں ضائع ہو۔ حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچنا والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جو بندہ ملنے آتا تھا حال احوال پوچھ کے فرماتے تھے، اچھا بھئی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی کرنی ہے، اچھا پھر ملیں گے، السلام علیکم، وہ اتنی بات کرتے تھے۔ آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا بعد میں ملیں گے، السلام علیکم۔ تو جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا انہوں نے پھر دنیا میں آخرت کے لیے اس قدر محنت کی۔ ہمیں وسط ایشیا میں ایک جگہ جانے کا موقع ملا، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ، ان کا مسلح پڑا ہوا تھا، وہ ماربل کا مسلح تھا۔ عجیب بات کہ اس کے اوپر وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلح پر پاؤں گھٹنوں سجدے کے نشان پڑ گئے تھے۔ اتنی تو نماز پڑھی ہوگی کہ پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ نشان سجود تیری زمین پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے؟ تو جو وہاں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے اجازت دی کہ جی آپ اس کے اوپر دو نفل پڑھ لیجئے، تو مجھے ان پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے جو گہرے ہو گئے تھے جیسے مقام ابراہیم پہ پاؤں کے نشانات ہیں، حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ کتنی نماز پڑی ہوگی کہ ان کے جسم کے اعضاء کے نشان پتھر کے اوپر پڑ گئے. تو پہلی بات کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور دوسری بات کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو، اور تیسری بات کہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو. تو بھئی ہم تو اللہ کے بہت محتاج ہیں، اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا ربا تو راضی تے سارا جگ راضی، جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں سارا جگ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. جب رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بس انسان کی زندگی میں خزاں آ جاتی ہے، جب اللہ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے. دنیا کہتی ہے او جی دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیر. اس کا مطلب کیا کہ اگر دریا میں رہنا ہو تو مگر مچھ کے ساتھ بیر اچھا نہیں ہوتا. تو بھئی دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو پھر اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے، ذلتیں ملتی ہیں، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا، اللہ میری قوم پوچھ رہی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو رب کریم نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ کام تو آسان ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں میں پروردگار ان سے راضی ہوں، اور اگر اپنے دل میں یہ مجھ سے خفا ہیں میں ان سے خفا. چنانچہ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے حالات میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، شکوے یہ نہ ملا یہ نہ دیا، ایسا نہ ہوا ایسا نہ ہوا. اگر ہمارے دل میں شکوے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں بھی ہمارا وہ مقام نہیں ہو سکتا. چوتھی بات، صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں. تو بھئی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، باقی مخلوق تو سب محتاج ہے، جس سے بھی مانگیں گے وہی محتاج ہوگا. تو محتاج سے کیا مانگنا؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو وہ گیا بادشاہ کے دروازے پر، تو کسی نے کہا بھئی ذرا صبر کرو کہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں. وہ رک گیا، थोड़ी देर बाद पूछा, भाई अब फारिग हुए? कहने लगा, नहीं नहीं अभी वो दुआ मांग रहे हैं। तो उसने दिल में सोचा कि जब खुद बादशाह ही अल्लाह से मांग रहा है तो मैं इस बादशाह के दरवाजे के मांगने के लिए क्यों आया, मुझे भी चाहिए मैं भी अल्लाह से मांगू। तो फरमाया कि सिर्फ उसी से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। अक्सर देखा है कि जो लोग मखलूक से उम्मीदें लगाते हैं उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। बुरा वक्त आने पे कोई साथ नहीं देता इल्ला माशा अल्लाह। जब वक्त बदलता है ना, लोगों की निगाहें भी बदल जाती हैं। इसलिए खुशियां आती हैं तो तकसीम करने वाले कई होते हैं, जब गम आता है तो झीलने के लिए इंसान अकेला होता है। तो फरमाया कि सिर्फ उसी से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। और आखिरी बात फरमाया कि गुनाह उतना करो जितना अजाब सहने की ताकत है। भाई हम में तो अजाब सहने की ताकत बिल्कुल ही नहीं है, हमसे तो धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, भला जहन्नम की गर्मी कहां बर्दाश्त हो। धूप में पसीना बहे तो हम साये की तरफ भागते हैं, जरा गर्मी का मौसम हो एयर कंडीशन जगह देखते हैं। जो इतने नाजुक हों तो भला जहन्नम की गर्मी कौन बर्दाश्त कर सकेगा। क्यामत के दिन जिस बंदे को सबसे कम अजाब होगा, हदीस पाक में आता है कि उसको आग के बने हुए दो जूते पहना देंगे। सबसे कम अजाब इस बंदे को होगा कि आग के बने हुए दो जूते पहना देंगे, इतनी गर्मी होगी कि उसका दिमाग हंडिया की तरह उबल रहा होगा। दो जूते पहनाने की गर्मी इतनी, और जिसको जहन्नम की आग में ही डाल देंगे उसका क्या हशर होगा। तो फरमाया कि उतना गुनाह करो जितना तुम में अजाब सहने की ताकत है। हमसे तो दो बंदों के सामने की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, दो बंदों के सामने कोई डांट पिला देना तो हमसे ये गम नहीं बर्दाश्त होता, और जी उन्होंने लोगों के सामने मुझे दलील किया। और क्यामत के दिन तो सारी मखलूक होगी, उनके सामने इंसान के पोल खुलेंगे, तो फिर उस दिन की जिल्लत कौन बर्दाश्त कर सकेगा। और यह भी जहन में रखें कि जो इंसान दुनिया में नाफरमानी करता है आखिरत में तो अजाब होगा, दुनिया में नकद भी सजा मिलती है। और नकद सजा यह है कि अल्लाह ताला इंसान के दिल को बेसकून कर देते हैं। जो बंदा गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता है उसका दिल बेसकून। ये अमीरों वजीरों की जिंदगियों को जरा करीब से देखो, एयर कंडीशन कमरे, लिहाफ लेके लेटे होते हैं, नींद नहीं आती तो फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती है। हमने एक मरतबा मस्जिद का लंटर डालना था तो गर्मी का मौसम था, तो जोहर के वक्त हमने छुट्टी की एक घंटा के लिए कि सब लोग खाना खा लें, कुछ आराम कर लें, नमाज पढ़ लें, दोबारा काम शुरू करेंगे। तो जब हम ऊपर से जरा नीचे उतरे तो हमने देखा कि कंक्रीट का ढेर है और एक मजदूर कंक्रीट के ढेर के ऊपर वही गर्मी में लेटा हुआ सोया हुआ था। गर्म कंक्रीट, जुलाई का महीना, इतना पसीना, कंक्रीट के ऊपर सोया हुआ है। सुभान अल्लाह। हम उसे देख के हैरान हुए, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। तो ऐसे भी लोग हैं कि गर्मी के मौसम में कंक्रीट पे सोए हुए हैं, और ऐसे भी हैं कि एयर कंडीशन कमरों में लिहाफों में नींद नहीं आती। उसकी वजह क्या कि उनके दिल बेसकून होते हैं, दिलों से सुकून निकाल लिया जाता है और एक खौफ दिल में डाल दिया जाता है। चुनाचे एक मरतबा एक साहब ने फोन किया, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो रात के 3 बजे उनका फोन आया। मैंने कहा जी खैरियत है, आपने इस वक्त फोन कर दिया। कहने लगे कि इतना माल पैसा है कि अगर मैं हिसाब लगाने का इरादा करूं तो मेरे अकाउंट्स ब्रांच वालों को 1 महीना चाहिए, जहां कंपनियों में मेरे शेयर हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसका हिसाब निकालने में 1 महीना चाहिए। इतने पैसे हैं, जो चाहता हूं खाता हूं, जहां चाहता हूं सोता हूं, पता नहीं क्या बात है मुझे रात को नींद नहीं आती। तो फिर मैंने कहा कि जनाब आपके पास माल इससे 10 गुना ज्यादा भी हो जाए आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए कि जिन कामों से नींद आनी थी आपकी जिंदगी उन कामों से खाली है। फिर मैंने तरगीब दी कि आप नमाज पढ़ा करें, तिलावत करें, नेकी करें, ये वो चीजें हैं कि जिनसे अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सुकून, दिल को सुकून अता फरमा दें। तो गुनाहों की एक मुसीबत यह भी है कि इसी दुनिया में इंसान को उसकी सजा मिल जाती है। एक फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर का वाकया जरा सुना दूं बात मुकम्मल करने से पहले। एक साहब थे ग्रेड 21-22 के, वो ऑफिसर थे, करोड़ों पति, रिश्वत का माल खूब जमा किया था। अल्लाह की शान के उसने एक जगह पर कोठी बनाई और कोठी मस्जिद के बिल्कुल करीब थी। जब वो वहां शिफ्ट हुए तो रात को सोए हुए थे कि फजर की अजान दी मुअज्जिन ने, तो जब स्पीकर पे अजान हुई तो इसकी आंख खुल गई। तो ये बड़ा गुस्से हुआ कि मौलवी साहब ने मेरी नींद खराब कर दी। अगले दिन इसने मुअज्जिन को बुलवाया और उसको डांटा कि मैं उस वक्त सोया हुआ होता हूं और मेरी नींद खराब होती है, तुम आइंदा के बाद स्पीकर पे अजान मत दिया करो। वो मुअज्जिन बेचारा, उसने लोगों को बताया कि जी मैं फजर की अजान तो स्पीकर में नहीं दे सकता, ये साहब मना करते हैं। मोहल्ले के जो बूढ़े थे उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों का मुल्क है, हम बूढ़े लोग तो घड़ी से वक्त भी नहीं देख सकते, हम तो अजान के इंतजार में होते हैं कि अजान आए तो हम मस्जिद पहुंचे। तो मियां आप अजान दो, इनको बता दो कि अगर इनको बुरी लगती है तो ये घर कहीं और बना लें, मस्जिद के साथ घर क्यों बनाया। अगले दिन मुअज्जिन ने फिर अजान दी, बड़ा गुस्सा आया। उसी वक्त उठ के ये बंदा मस्जिद में आया और इसने आके मुअज्जिन को एक थप्पड़ लगाया। तुझे मैंने कहा था कि तूने अजान नहीं देनी स्पीकर पे, तूने क्यों अजान दी, मेरी नींद खराब कर दी। बस इसका ये तकब्बुर था कि अल्लाह ताला की इस पर पकड़ आ गई। क्या हुआ कि चंद दिनों के बाद इस पर फालिज का अटैक हुआ और इसके दोनों हाथ भी सीने के साथ लग गए। जब दोनों हाथ सीने के साथ लग गए तो दफ्तर वालों ने छुट्टी, नौकरी से निकाल दिया। बहुत पैसा खर्च किया मगर ठीक ना हुआ, घर आ गया। अब अल्लाह ताला की शान के थोड़े दिनों के बाद सेकेंड अटैक हुआ और इसके जो नीचे की टांगें थी ना वो भी साथ लग गई। دونوں ہاتھ دونوں ٹانگوں پہ فالے، یہ گوشت کا لوتھڑا، زندہ لاش، بیوی خدمت کرتی، بچے خدمت کرتے، مگر اس کا مزاج تو شاہانہ تھا نا، افسرانہ مزاج تھا، ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے کو گالیاں نکالنا، ڈانٹنا، یہ روز کا معمول تھا۔ گھر میں بھی یہی سلسلہ کہ بیوی سے ذرا کسی چیز کے لانے میں دیر ہوئی تو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اب بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان۔ اس نے ایک دن کہا بھی صحیح کہ دیکھیں ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور آپ پھر مجھے بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیا کریں۔ اس نے اور گالیاں نکالی۔ جب گالیاں نکالی تو بیوی کو غصہ آیا، اس نے بچوں کو لیا اور لے کے وہ میکے چلی گئی، اکیلا پڑا ہوا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھئی بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ آئیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں، تو آپ بھائی ہیں، میری خدمت کریں۔ بھائی آیا اور ان کو گھر لے گیا۔ اب وہاں بھابھی اور بچوں نے اس کو خدمت شروع کر دی، مگر اس کا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ، ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ غصہ۔ تو ایک دن بھائی نے سمجھایا کہ بھائی میرے بھی بچے تیرا اتنا خیال کر رہے ہیں اور اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ محبت کا سلوک کرے الٹا ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تو زن مرید بن گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ جب اس نے بھائی کو ڈانٹا تو اس کے بچوں کو غصہ آیا کہ ہمارے والد صاحب اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے سامنے گالیاں نکالتا ہے۔ انہوں نے چار پائی اٹھائی اور اس بندے کو اٹھا کے دروازے کے باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ پوری رات پڑا رہا، کوئی اپنا نہیں، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کوئی اپنا ہے، بھوک سخت لگی ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو گرمی کا موسم تھا، زمین بھی تپنے لگی اور پسینہ بھی آنے لگا، تو بھوک بھی تھی۔ تو اس نے جو قریب آ جا رہے تھے نا لوگ، ان سے اللہ کے نام پہ بھیک مانگنی شروع کر دی کہ اللہ کے لیے مجھے کوئی کھانا دے دے، میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ نہیں کھایا۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کچھ 10 روپے دینے۔ اس نے کہا میں پیسے کو کیا کروں گا، آپ کھانا لائیں اور مجھے کھلائیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کالج پہنچنا ہے وقت پہ، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے اس کو پیسے دینے لگے، اس نے کہا بھائی مجھے تو روٹی چاہیے۔ وہ گیا اور قریب ہوٹل سے روٹی لے کے آیا اور اس کو کہا کہ بھائی روٹی لے لو۔ یہ کہنے لگا بھائی مجھے کھلاؤ۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس فرصت نہیں، میں نے تو دفتر پہنچنا ہے، یہ روٹی پڑی ہے۔ اس نے کہا اچھا نیچے نہ رکھو، مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کیسے، ہاتھ بھی سینے پہ لگے ہوئے تھے اور پاؤں بھی یوں سینے کے قریب آ گئے تھے، تو پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور کتے کی طرح اس روٹی کو توڑ توڑ کے منہ سے کھانے لگا۔ جس کو مال کا اتنا نشہ تھا کہ اذان کے آنے سے اس کی نیند کھل جاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ تم نے کیوں اذان دی سپیکر پر، آج اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ بھیک مانگ کے کھا رہا ہے اور کتے کی طرح پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے مگر اس کی سزا پھر دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ تعالی نے تمہاری اسی زندگی کو جہنم کا نمونہ نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دیتا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان گناہوں میں لگتا ہے اسی دنیا میں اور پھر کہتا ہے جی اس جینے سے تو مر جانا اچھا تھا. پریشان ہے تو کہہ رہا ہے نا کہ جینے سے مر جانا اچھا تھا, تو بہتر ہے انسان گناہ ہی نہ کرے. تو یہ پانچ باتیں تھیں جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں انہوں نے لکھ کر لگائی ہوئی تھی. پہلی بات, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے. دوسری بات, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور تیسرا, اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو. اور چوتھی بات, صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں. اور پانچویں بات, کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے. اور ہم میں تو بالکل ہی طاقت نہیں عذاب سہنے کی. لہذا آج کی اس مجلس میں ہم اللہ رب العزت کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے کریم آقا, ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے, ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا دیجئے. ہم تو دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے, کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دو عالم سے غنی ہے, میں فقیر ہوں, روز معاشر عذر ہا اے من فضیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا. گر تمی بینی حسابم ناگزیر, اور اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمن لینا ہے, تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجھل میرا حساب لے لینا, میرے پلندے ان کے سامنے کھلیں گے, کتنی شرمندگی ہوگی. تو آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.